पहला सवाल तो ये मैम, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी का ना एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है जिसमें टीचर एजुकेटर्स को हम हमारे स्टेट से भेज सकते हैं। हमने अभी तक कोई ऐसे टीचर एजुकेटर्स को उसके लिए भेजा है क्या? अभी तक
नहीं, महाराष्ट्र से कोई गया नहीं।
कोई नहीं गया है? अच्छा, ठीक है। और हम लोग जो टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन जो टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे DIECPD हो गया और अपना CTE हो गया और IASE हो गया, इन सब के बीच में या SCRD, इन सब के बीच में मतलब कुछ कोलैबोरेशन होता है? साथ में बैठ के बात करते हैं कि अच्छा हम अभी BEd में ये कर रहे हैं, DEd में ये कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ?
एक्चुअली कैसे होता है कि वंस इन अ व्हाइल जैसे JRM आई थी तो हम लोगों ने इन सब को बुलाया था, IIC CTEs को।
हाँ।
फिर कोई बाहर स्टेट से आते हैं कि हमें IISc को विजिट करना है, या MHRD से एक दो बार लोग आए थे ऐसे।
हाँ।
मैं ही गई थी वो टीम के साथ, तो कुछ IIC CTEs देखे, फिर ऐसा लेखाधिकारी कर दे।
हाँ, ठीक है।
आणि बाकी और ऐसे भी होता है कि साल में हम लोग जब एनुअल वर्क प्लान बनाते हैं तब ये लेटर जब MHRD से आता है तो हम लोगों को आता है, SCRT को।
हाँ, हाँ।
फिर हायर एजुकेशन को आता है, नहीं है पता नहीं, फिर उनको तो एक बार जब होती है हमारी कॉमन मीटिंग कि अभी ये ऐसे करना है, ये डेडलाइंस है, ये आप भी करो, इतना हमारा रहता है। या फिर स्टेट में अगर कोई MHRD से वो अनिल स्वरूप जी आए थे बीच में, तो हम लोगों ने इन सबको भी एक 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 यानी बुला लिया था। तो ऐसे रहता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म, ऐसा सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है कि हम लोग हर 3 महीने बाद मिलते हैं या 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, ऐसा कुछ नहीं।
कुछ नहीं, ठीक है। अभी अगर हम देखें कि SCRT, DIET, CTE, BITE है, हमारे महाराष्ट्र में कोई BITE नहीं है।
5 BITE प्रपोज किए थे लेकिन वो 12-13 में किए थे, बाद में धीरे धीरे पता चला कि BITE करके करेंगे क्या महाराष्ट्र में, तो ऑलरेडी सीट्स इतने DLED में, और जो हम लोग फोकस डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड या ST पॉपुलेटेड, तो उसमें ऑलरेडी वही लोगों के लिए DLED है, तो फिर से अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए BITE किया ही नहीं। फिर DIET भी थे हमारे इन सर्विस के, इन सर्विस कुछ ग्रांटेड DEd कॉलेजेस में भी चलता है, तो इन सर्विस के लिए है, प्री सर्विस के लिए है, फिर अलग से BITE करने की ज़रूरत ही नहीं है।
नहीं।
तो महाराष्ट्र में पहले प्रपोजल था 5 BITE का जो कैंसिल हो गया।
तो SCRT, DIECPD और CTE और IIC, इन सब के बीच, इन सब में एक्चुअली मेजर गैप क्या है कि SCRT कोऑर्डिनेशन में गैप है या फिर अपना एनहांसमेंट में गैप है?
नहीं, गैप बेसिकली ये है कि हायर एजुकेशन अपने अलग तरह से जा रहा है और स्कूल एजुकेशन अपने अलग तरीके से जा रहा है, और ये दोनों को कंबाइन करने के लिए SCRT ने सिर्फ कोशिश की है कि हम साथ मिलके कुछ करेंगे ये, लेकिन वो कोशिश ही रही है, तो कुछ ज़्यादा उसमें कुछ ये नहीं हुआ, यानी कभी हम लोग एक्सपर्टीज बोल के उनके यहाँ से बुलाते हैं लोग कोई गेस्ट लेक्चर के लिए, इतना थोड़ा बहुत है, ज़्यादा कुछ होता नहीं।
और
मेन गैप तो यही है कि हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में वहाँ पे जो रिसर्च हुआ है वो यहाँ पता चलना चाहिए, यहाँ पे जो हो रहे हैं वहाँ, तो ऐसी लिंकेज एस्टैब्लिश नहीं हुई।
और ह्यूमन रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ और फंक्शनैलिटी, मतलब 3 ये चीज़ें भी हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज SCRT, DIET, IIC, CTE, इन सब में मतलब कैसे हैं, थोड़ा उसके ऊपर भी आप अगर बता सकते हैं तो।
उसमें कैसा है कि IIC और CTE तो हुए,
हाँ,
तो IIC और CTE कैसे हुए कि एस्टैब्लिश जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट है या BEd कॉलेज है, उसका अपग्रेडेशन होके वो IIC हुआ या CTE हुआ। जैसे पूना में SNDT IIC है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन था SNDT का।
अच्छा।
और औरंगाबाद में IIC है जो गवर्नमेंट BEd कॉलेज था।
अच्छा।
तो उसको अपग्रेडेशन हुआ, यानी नॉमिनली अपग्रेडेशन है वो, क्योंकि उसके बाद कोई भी एकेडमिक पोस्ट वहाँ पे अलग से नहीं मिली है जो एक्चुअली थी उसमें प्रपोजल में। अगर IIC होती है तो इतने इतने प्रोफेसर के पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये इतने इतने उनको मिलने चाहिए। वो एक तो ह्यूमन रिसोर्सेस वैसे मिले नहीं वो लोगों को, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो ग्रांट्स थे वो पहले पहले जब शुरुआत हुई जो प्लान पीरियड में चौथे पाँचवें में तो जब थोड़ा थोड़ा उनको मिला था इंफ्रास्ट्रक्चर या जो नॉन रिकरिंग ग्रांट बोलते हैं, रिकरिंग जिस साल उनको मिली, एक दो साल मिली शायद उनको, एक दो चार बार मिली होंगी, तो जिस टाइम मिली उस टाइम उन्होंने प्रोग्राम लिए तो कौन से लिए कि अगर ट्रेनिंग लेना है ये करना है, तो जितना एग्जिस्टिंग स्टाफ है जो ऑलरेडी अंडर स्टाफ है आईएससी लो या सीटीए लो, तो उसमें बीएड के लिए जितनी स्ट्रेंथ चाहिए उतनी भी टीचर एजुकेटर की नहीं है, फिर भी वो लोगों ने ग्रांट्स आए बोल के ये लिया। बाद में फुल फ्लेज चलने के लिए जितने ह्यूमन रिसोर्सेस चाहिए थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज चाहिए थी वो वहाँ पे इन प्लेस हुई ही नहीं, सिर्फ नॉमिनली हुआ, वो नेम चेंज हुआ, ये आईएससीए सिटी ये है, लेकिन रोल में जो ये आना चाहिए तो वैसी मैन पावर आएगी तो ही रोल में बदलाव आएगा। तो एक तो वो मैन पावर नहीं रही, फिर सस्टेनेबिलिटी भी नहीं थी कि कंसिस्टेंटली ये फ्लो आ रहा है, ये करना है, ऐसे भी नहीं हुआ। तो ये बातें इसमें है कि कोई भी आईएससी या सिटी को फुल फ्लेज स्टाफ कभी भी दिया नहीं गया, सिर्फ नाम के लिए अपग्रेडेशन हुआ।
ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे टीचर एजुकेशन सिनारियो में सीटीई और आईएससी ऐसी चीज़ें जो काफ़ी हद तक निग्लेक्टेड है,
निग्लेक्टेड ही है। और महाराष्ट्र के लिए तो ऐसा है ना कि डाइट के जो फैकल्टीज़ है उनका स्ट्रेंथनिंग सीटीई आईएससी नहीं करना,
हाँ
तो
हाँ,
वो तो हुआ ही नहीं महाराष्ट्र में।
हाँ,
डाइट का स्ट्रेंथनिंग डाइट में जो आए टीचर एजुकेटर का करना है, तो जो एससीईआरटी में जो थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलता है, हाँ, या फिर नेशनल प्लेटफॉर्म पे एक दो चार फैकल्टीज को साल भर में मिलता है
हाँ,
उतना ही।
हाँ,
बाकी सस्टेनेबल प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ डाईसीपीडी फैकल्टीज जो आईएससीज और सिटीज ने करनी थी, या फिर सेकेंडरी टीचर्स का जो अप्लीमेंट करना था या कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके लिए आईएससीज और सिटीज उतने ये ही नहीं रहे। फिर सेकेंडरी टीचर्स का जो इन सर्विस ट्रेनिंग है वो एसएससी बोर्ड के पास चला गया।
अच्छा।
फिर वो एक लिमिटेड हद तक था कि अभी नेक्स्ट सैलरी का ये देना है, इंक्रीमेंट देना है 12 साल के बाद या 24 साल के बाद, तो उसके लिए वो मैंडेटरी था कि इतना करना है, तो उतना ही रहा फिर सेकेंडरी टीचर्स के लिए। हालांकि उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कंटिन्यूसली करने की जिम्मेदारी इसकी थी आईएससीज ऑफ सिटीज की, वो हुआ ही नहीं। और उनको अगर हम लोग जब भी डिस्कशन में जाते थे तो वो बोलते हम लोगों के पास अलग से फंड्स नहीं है, अलग से फैकल्टीज नहीं, जो है वही हम ओवरलोडेड है, तो हम कहाँ करेंगे। और फिर उनको पूछने वाला भी कोई नहीं था कि आप आईएससीज हो या सिटीज हो तो आपके साल भर में ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो भी नहीं।
इनको सीएसएसटी ओके, वो तो हमारी सुबह भी बात हुई थी कि फंड्स बहुत ही कम उन लोगों को मिले हैं।
नहीं, एक पेनी भी नहीं मिले उनको, क्योंकि उनका प्रपोजल ही वहाँ तक नहीं पहुँचा, तो कैसे आएगी,
कैसे आए, सही
ये बात हुई है।
ठीक है मैम, हम इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं ताकि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स हो स्टेट में?
ऑलरेडी एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ट्रेन टीचर्स है महाराष्ट्र में। कोई भी अनट्रेन टीचर 7000 है ऑन पेपर एज पर यूडैस डेटा, नियर अबाउट 7000। तो 7 लाख, मोर देन 7 लाख टीचर्स में से अगर 7000 अनट्रेन है तो कुछ भी नहीं है। और उनके लिए भी हम लोग अभी 2019 तक एज पर आरटी पहले 15 तक था, अभी 19 तक एक्सटेंड किया गया है। तो जब तक तो वो 7000 भी ट्रेन हो जाएंगे, वो बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेन टीचर होने के बावजूद हमारे बच्चे नहीं सीख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के लिए प्रॉब्लम है।
सीटीई जो सीटीईटी होता है ना,
हाँ,
जो सीटेट होता है,
हाँ,
और एक टीईटी भी होता है,
हाँ,
तो एक तो सेंट्रली होता है और एक स्टेट वाला जो, उसमें टीचर्स का कैसा है परफॉर्मेंस?
बहुत कम है, 3%
ही क्लियर कर पाते हैं,
लेस देन 5% है। दोनों अलग होती है ना, एक एलिमेंट्री की और एक सेकेंडरी की, तो लेस देन 5% है दोनों
में।
और हम लोगों को कैसा है, उसका पासिंग परसेंटेज एनहांस करके भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज ही नहीं है। तो हम लोगों को ज़्यादा बढ़ा के करेंगे भी क्या वो लोगों को, ये भी बात है।
तो एग्जिस्टिंग टीचर्स जो हैं, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो लोग तो सीटीईटी मतलब उनको भी क्लियर करना है ना, टीईटी वो क्लियर कर चुके हैं सब लोग?
नहीं, एग्जिस्टिंग को नहीं
करना है।
अच्छा ठीक है,
एग्जिस्टिंग
जो न्यूली रिक्रूटेड होंगे ना, जब से वो आई है उसके बाद के,
उसके बाद से। अच्छा ठीक है,
आप वो कह रहे थे कि बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो आपको
यानी सात साल तक आए हैं, आठ साल तक आए हैं और दूसरी क्लास का नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, तो फिर ये कहाँ गड़बड़ है, ये सोचने की बात है। ट्रेन टीचर्स होने के बावजूद भी बच्चे क्यों नहीं सीख रहे हैं जो एज अप्रोप्रिएटली, ग्रेड अप्रोप्रिएटली उन्हें सीखना चाहिए, ये हमारा कंसर्न है अभी। जो असर भी दिखाता है, नैच भी दिखाता है, स्लैश भी दिखाता है कि बच्चे जो ग्रेड में है वो ग्रेड का नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं, नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, तो ये क्यों हो रहा है। तो फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ थ्योरी में तो बहुत सारे लोग सीखते हैं, बीएड में, डीएलएड में ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में वैसे कर रहे हैं क्या? तो मॉनिटरिंग कम हो रही है क्या? या फिर जो सपोर्ट चाहिए हमें, एक क्लस्टर हेड का है, एक्सटेंशन ऑफिसर जो सपोर्ट कर रहे हैं टीचर, वो एकेडमिकली नहीं देख रहे हैं क्या? ये सब बातों पे इसलिए हम लोगों ने पीएसएम यानी एजुकेशनली प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र के जीआर के बाद ये मिशन मोड में काम किया है कि हर एक टीचर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से कैसे सिखाए, कैसे इनिशिएटिव ले, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर कैसे हो, बच्चे खुद के खुद पढ़े ऐसा एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करें, और वो रादर देन टीचर एज अ फैसिलिटेटर कैसे रोल करें। तो इस पर हम लोगों ने अलग अलग एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जो लोग ये कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कुमठे भी, वहाँ के एक्सटेंशन ऑफिसर ने हर जगह पे उनके 39 स्कूल्स में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से पढ़ा रहे हैं टीचर्स, कि उन्होंने ट्रेनिंग टीचर्स को वैसे दिया, वैसे उस टाइप से अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर बाकी लोग टीचर जाके देख के आए वहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अपने पैसे से जाके मोर देन 60,000 टीचर्स वो देख के आए, फिर उसके बाद अलग अलग बिट में वो काम हो रहा है कि बच्चे कैसे अलग अपने टीचिंग एड लेके अपने आप कैसे सीखते हैं, ये सब हो रहा है।
ठीक है, तो अभी हम लोग जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको कैसे एनहांस कर सकते हैं, मतलब बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, SCERT, डाइट, CTE और IAS जितने भी जो भी हैं, उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो अच्छे से हो पाए।
तो अभी ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है SCERT का, तो हम उसको महाराष्ट्र एकेडमिक अथॉरिटी बोल रहे हैं। महाराष्ट्र एकेडमिक अथॉरिटी में अभी 8 डिपार्टमेंट्स हैं, तो पहले से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं, जैसे HRD अभी आया, CPD अभी आया, फिर करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर अलग अलग ये है, कोऑर्डिनेशन के अंदर करिकुलम है, फिर इवेल्युएशन है, फिर सब्जेक्ट वाइज जो डिपार्टमेंट होने थे वो SCERT में पहली बार हुए अभी।
अच्छा,
आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग ये मैथ्स का डिपार्टमेंट है, ये साइंस का है, ये इंग्लिश का है, ये सोशल स्टडीज़ का है, ऐसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पहली बार बनाए हैं। फिर सब DICPD जब से बने हैं तो यहाँ पे डेप्यूटेड स्टाफ में हम लोगों ने सब्जेक्ट स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्सेस लेने के लिए ये प्रोसेस की है। तो अभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैथ्स के लिए 2, इंग्लिश के लिए 2, मराठी के लिए 2, ऐसे DICPD लेवल पे भी हमने लिया है। तो अभी हम लोग ऐसे विजुलाइज कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सपोर्ट हम टीचर और बच्चे तक जा पाए, तो इसके लिए ये अच्छे से लिंकेज होना। SCERT का भी डिसेंट्रलाइजेशन किया है, तो ये महाराष्ट्र एकेडमिक अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजिंग टू 5 रीजनल एकेडमिक अथॉरिटीज, तो ये 5 रीजनल एकेडमिक अथॉरिटीज़ होने की वजह से पूरा कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट पे ही ना होके वो रीजन संभालेंगे कि वो रीजन के अंदर जितने DICPD है उनको वो सपोर्ट करेंगे।
मैम ये कौन कौन से रीजन्स हैं?
5 एक मुंबई में IVGS इंस्टीट्यूट थी, इंस्टीट्यूट फॉर वोकेशनल गाइडेंस, वो अभी रीजनल एकेडमिक अथॉरिटी है। फिर एक SISE नागपुर, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर साइंस, तो उसको हम लोगों ने रा कर दिया नागपुर में। फिर 2 डाइट्स को रीजनल एकेडमिक अथॉरिटी किया, अमरावती और नासिक को, और फिर SIEM स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश फॉर महाराष्ट्र, उसको भी एक रा कर दिया औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद, अमरावती, नासिक, मुंबई एंड नागपुर, ऐसे 5 रीजनल एकेडमिक अथॉरिटी हो गए।
मैम आपको लगता है हम लोग को ये भी विजिट करना चाहिए?
करना चाहिए, तो आपको वहाँ ज़्यादा कुछ अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी ये रिफॉर्मेशन की स्टेज पे है।
अच्छा।
या वहाँ अभी फुलफिल स्टाफ भी नहीं ये किया है, सिलेक्शन प्रोसेसेस
अभी शुरू है.
अच्छा.
तो फिर भी आपको एटलीस्ट उनको लगेगा तो कि हम लोगों को विजिट करने के लिए आए, रा का कुछ डिफरेंट रोल है. फिर आपको भी पता चलेगा कि वहाँ पे मैन पावर अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक कैसी दी है. हेलो, मुझे सर ने बुलाया है.
ओ, नीचे
नीचे डायरेक्टर सर.